તારીખ 23/9/1957 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 331 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 40.
શ્રીમદજી કે આત્મભાવ પ્રગટ હોને મેં બહુત પાત્રતા વાલે કહ્યું છે. જ્ઞાની હો યા તીર્થંકર હો, સુનને વાલે કે પાત્રતા વિશેષ હોતી હૈ, આત્મભાવ ભી વિશેષ પ્રગટ હોતે હૈ. તીર્થંકર દેવ કી ધર્મ સભા જો સમવસરણ બોલા જાતા હૈ, ઉસમે તો એક નિયમ એસા હૈ કે બિના ગણધર વાણી નહીં કહેગી. ક્યું કે ઇસ દિવ્ય ધ્વનિ મેં આત્મકલ્યાણ કા સર્વોત્કૃષ્ટ રહસ્ય ખુલ કરકે આતા હૈ. વો સૂક્ષ્મતિ સૂક્ષ્મ વિષય હૈ, વો વિષય ઝેલને વાલા પાત્ર ભી ઉત્કૃષ્ટ ચાહીએ.
બરાબર,
इसलिए बिना गंधर्व कभी समूह शरण में उपदेश चलता नहीं भगवान का.
जी,
ज्ञानी की धर्म सभा में भी पात्र जीव होते हैं तो बहुत बातें निकलती है,
जी.
नहीं होते हैं तो उतनी बात नहीं निकलती.
बराबर,
जैसे हम कह सकते हैं कि गुरुदेव ने इतना तत्व का रहस्य खोला,
जी.
उसका मुख्य निमित्त दैनश्री थे. अगर इनकी सभा में ऐसे ज्ञानी नहीं होते तो शायद इतनी बात नहीं निकलते.
जी,
ऐसे एक निमित्त नैमित्तिक वक्ता श्रोता के बीच में संबंध होता है. सुभाष भाई कोई ऐसा ही पात्र था कि जिसके निमित्त से श्रीमद जी को आत्मभाव बहुत आविर्भूत होते रहते थे. इसलिए उनका संबोधन वो करते थे उसमें विनय का भाव आए बिना नहीं रहता था. निमित्त कुछ करता नहीं, परंतु जिसको निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है उसको निमित्त के प्रति बहुमान और विनय आए बिना रहता नहीं. अगर नहीं आता है तो समझना चाहिए कि निमित्त नैमित्तिक संबंध वहाँ बना ही नहीं है, यानी कुछ ज्ञानी से लाभ नहीं हुआ या तीर्थंकर से लाभ हुआ ही नहीं. विनय कृत्रिमता से लोग करते हैं वो बात नहीं है, अंतर से जो विनय आता है इसकी बात है. देखा देखी से भी विनय हो सकता है, वो बात नहीं. यहाँ तो ज्ञानी होकर के मुमुक्षु के प्रति लिखते हैं कि वीतरागता से अत्यंत विनय से प्रणाम, विनय पूर्वक प्रणाम करते हैं सुभाष भाई को. दूसरे मुमुक्षु को इस पद्धति से नहीं लिखते थे. ये सुभाष भाई की पात्रता विशेष थी और वो उनके उपकारी वो भी माने हैं इस कारण से, और उपकार मान करके इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुए ऐसा खुद की आत्मा में से वो भाव आया है वो उल्लेख उन्होंने और जगह किया है. अब लिखते हैं कि भ्रांतिवश सुख स्वरूप भाष्यमान होते हैं ऐसे इन संसारी प्रसंगों एवं संसारी प्रकारों में जब तक जीव को प्रीति रहती है तब तक जीव को अपने स्वरूप का भास होना असंभव है. क्या कहते हैं, स्वरूप का भाव भाषण होना माने स्वरूप की पहचान होना, स्वरूप का निश्चय होना।
जी
कहाँ तक नहीं होता है, अनेक कारण है, उसमें एक खास कारण है। लोक संज्ञा के कारण भी भाव भाषण नहीं होता, लोक संज्ञा के कारण से भी भाव भाषण नहीं होता, और असत्संग की रुचि होने से भी भाव भाषण नहीं होता। ये तीन कारण उन्होंने 449 पत्र में लिखे हैं। यहाँ एक और कारण दिया है कि भ्रांतिवश सुख स्वरूप भाष्यमान होते हैं, भाष्यमान होते हैं मैंने फील होते हैं, लगते हैं।
जी
कितने संसार के प्रसंग और प्रकार ऐसे हैं कि जीव को उसमें सुख लगता है।
जी
तो जीव की भ्रांति है, ज्ञानी की दृष्टि में, ज्ञानी की नजर में तो भ्रांति है, खुद को तो सही लगता है, मुझे तो सुख का अनुभव हो ही रहा है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि ये जीव की भ्रांति है, और जब तक ऐसी भ्रांति चालू रहेगी तब तक जीव को अपना जो अनंत सुख स्वरूप आत्मा है उसका भाष्यमानपना वो लगेगा नहीं कि ये सुख स्वरूप है। लगना चाहिए कि मैं सुख स्वरूप हूँ, क्योंकि सुख लगने की चीज है, सुख समझने की चीज नहीं है। कि हम समझ ले कि आकुलता का अभाव इसका नाम सुख, सुख की परिभाषा क्या है, आकुलता का अभाव इसका नाम सुख, तो सुख की परिभाषा बराबर है और विकल्पात्मक समझ भी बराबर है, लेकिन वो समझ का विषय नहीं, विषय तो अनुभव का है सुख तो, इसलिए भाष्यमान होना चाहिए। हमारे आत्मा में सुख है ऐसा लगना लगने लगे तब तो भाष्यमान पड़ा हुआ है।
बराबर,
ऐसा भाष्यमान पड़ा हुए बिना उसकी आसक्ति होगी नहीं, और आसक्ति हुए बिना अनुभव होगा नहीं।
जी
क्योंकि जीव को तो सुख चाहिए, पर सुख के प्रति वो आसक्त है, लेकिन दिखे तब तो, बिना दिखे ये बनिया मानने वाला नहीं है। चाहे जितनी बार हजार बार आप उसको सुनाओ और हजार बार खुद पते बढ़े और लाख बार रटे, लेकिन वो बनिया अंदर में मानने वाला नहीं है, मानने वाला मैंने परिणमने वाला नहीं है। दिखे देखो फिर कितना उम्र के रुचि आती है, का समुद्र है अंदर में, तो भाष्यमान हो जाए सैंपल से, सैंपल से पूरी चीज दिखने में आती है। हम ये चावल पकाते हैं ना मैंने रसोई में, 100-200 आदमी का चावल रखे हैं चम्मच पर या तवेथा पे, दो चार दाने लेते हैं, दबाते हैं, दबा करके देख लेती है कि पका है कि नहीं पका है। अरे वो दो चार जहाँ दाने पके हैं तो पूरे चावल
पक गया,
पक गए। भाष्यमान पना किसका हुआ, पूरा चावल का हो गया। ऐसे सैंपल आता है ज्ञानोपयोग में, कषाय का अभाव जिस ज्ञान में है वहां से पूरी चीज का पता होता है। लेकिन कब कि ये भाष्यमान पना नहीं हुए, तब संसार के प्रकार और प्रसंग में सुख लगता रहे पर आत्मा में आत्मा का सुख भी लगे
ऐसा नहीं
दो बात नहीं करते, क्योंकि एक भ्रांति है एक वास्तविक है, भ्रांति और वास्तविक साथ में रहता
नहीं
कभी। तब तक जीव को अपने स्वरूप का भास होना असंभव है, और सत्संग का महात्म भी तथारूपता से भाष्यमान होना असंभव है। दूसरी बात कही कि आत्मस्वरूप तो भाष्यमान होगा नहीं, लेकिन सत्संग की महिमा कितनी है वो भी भाष्यमान होगी, वो भी लगेगी, क्योंकि सत्संग इसका निमित्त है। आत्मस्वरूप भाष्यमान होने का स्वाध्याय सत्संग निमित्त है, उसकी महिमा भी नहीं आएगी। जिसकी जो जो दरज्जे में आनी चाहिए वो दरज्जे में नहीं आएगी, तो क्या होगा कि दूसरे दूसरे काम का महत्व बना रहेगा और सत्संग को हम चुप जाएंगे, ये बात बनेगी। कभी वो काम है, अभी वो काम आ पड़ा है, अभी वो काम आ पड़ा है, वो निपटे तो करे, वो निपटे तो करे, वो निपटे तो करे, एक पीछे एक उदय तो लगातार आता ही रहेगा, और सत्संग का महत्व नहीं होने से सत्संग में रहना हुए ये बात बनने वाली नहीं है। यहाँ से एक बात जो साफ स्पष्ट रूप से करनी चाहिए वो है कि आत्मकल्याण और संसार के कार्य सभी मुमुक्षुओं को एक साथ होते हैं। पूर्व के आठों कर्म का उदय हम लोगों को निरंतर चालू है
बराबर,
और हमें आत्म कल्याण भी करना है। नहीं करना है इसकी चर्चा हमें नहीं करनी है, करने हैं, करने के जो आते हैं सत्संग में इसके लिए बात है। अब प्रायोरिटी मैंने मुख्यता, प्रायोरिटी में भी टॉप प्रायोरिटी
प्रधान मुख्यता,
हाँ दो प्रायोरिटी है, एक टॉप प्रायोरिटी और एक लास्ट प्रायोरिटी, तीसरी बीच में नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी वाली बात है। नहीं, संसार के कार्य जब तक टॉप प्रायोरिटी में चलते हैं तब तक आत्मकल्याण लास्ट प्रायोरिटी में रखा गया, तो सत्संग आदि भी लास्ट प्रायोरिटी में जाएगा, और जब सत्संग आदि आत्मकल्याण का उपाय टॉप प्रायोरिटी में आएगा, संसार के सभी कार्य लास्ट प्रायोरिटी
बराबर
रहेगा। दोनों उदय तो तीर्थंकर को भी छोड़ता नहीं है, तो उदय तो रहेगा लेकिन प्रायोरिटी चेंज हो गई तो लाइन बदल गई, प्रायोरिटी चेंज नहीं हुई तो कुछ भी धर्म साधन करे, सत्संग करे, कुछ भी करे, इसका फल संसारी आएगा, दूसरा कुछ आने वाला नहीं है। ये बात साफ हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। इतनी मुख्यता, इतनी जो मुख्यता है
जी,
क्यों इतनी भी मुख्यता क्यों, अब ये सवाल है। तो देखिए, आपको लाभ भी इतना ही होने वाला है अगर आप अपना आत्म कल्याण कर लेते हो
जी,
तो आपको चारों गति के दुख का अभाव होने वाला है, चारों गति के जन्म मरण के दुख का अभाव हो गया, पीड़ा बाधा टेंशन आदि सबों का अभाव हो जाएगा, तो इतना बड़ा लाभ होता है, इसके सामने इतनी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए क्या? आप देखो हम व्यवसाय को कितनी प्रायोरिटी देते हैं, हमारा जो व्यवसाय है धंधा है उसको प्रायोरिटी देते कि नहीं देते?
तो प्रायोरिटी देते हैं
उसको। देखो ये आजकल सीजन चल रही है, हमको घर खाने घर आकर के खाने की फुर्सत मिलने वाली नहीं है। घर वाले को बोल देंगे कि हम शायद आए भी नहीं भी आए, हमारा कोई ठिकाना आजकल नहीं है, क्योंकि इतनी घरागी लगी हुई रहती है कि हमको वहां से छुटना हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकेगा। तो कोई बात नहीं, आपका टिफिन भेजा जाएगा वहां, लेकिन खाना जरूर, भूखे मत रहना। लेकिन हमको इंटरेस्ट ऐसा रहता है कि एक बजे खाना आता है, चार बजे तक टिफिन खोलने की फुर्सत हमको
नहीं
है। फुर्सत तो ले सकते हैं लेकिन इंटरेस्ट हमको नहीं है, इंटरेस्ट हमको व्यवसाय करने में। फिर आप व्यवसाय किसके लिए करते हो बताओ? पेट भरने के लिए तो व्यवसाय करते हो, फिर भी टॉप प्रायोरिटी खाना खाने की नहीं रहती, टॉप प्रायोरिटी काम धंधे की रहती। यही कारण है कि हमारा एक निश्चय इसके पीछे बन चुका है कि सभी प्रकार के पांचों इंद्रियों के सुख का ये साधन एक है। खुराक भी यहाँ से आएगा, दवाई भी यहाँ से आएगी, और पलंग पंखे गाड़ी भी यहाँ से आने वाली है। तो इसके पीछे टॉप प्रायोरिटी लगती है या नहीं लगती है सब आपके? तो कोई समझाने की चीज नहीं है, सबके अनुभव की चीज है। ये पर प्रायोरिटी का चेंज हुए बिना आत्म कल्याण का इतना बड़ा लाभ किसी को हो जाए तो बनने वाला नहीं है। और प्रमाणिकता से ऐसा लाभ लेने के लिए हमारी वृत्ति भी होनी चाहिए। जब हमको सर्वोत्कृष्ट चीज पाना है तो उसकी कीमत हमको चुकानी कि नहीं चुकानी, मुफ्त में लेनी है क्या? अरे कम दाम में भी नहीं लेनी चाहिए। अगर हम प्रमाणिक है, हम आपके दुकान पे आए हैं, आप कहेंगे क्या ये आएगी, आपको क्या चीज चाहिए, हम बोलते ये चीज चाहिए, आप बोलेंगे कि आपको कम दाम में देंगे, हमको ना दे देना चाहिए क्या? कि कम दाम देने के लिए आपके वहां नहीं आए, आपका स्नेह इसलिए आए, दाम तो आपको पूरा लेना होगा। क्यों? हम और जगह जाते तो पूरा दाम देते कि नहीं देते, तो आपको क्यों कम दे रहे? आपके प्रति तो स्नेह है, आपको तो रुपये की जगह 17 आना देने का भाव आना चाहिए, 15 आना क्यों देने का भाव आना चाहिए? हाँ, ये हमारी प्रमाणिकता है। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, तो संदीप के जान पहचान वाले के वहां जाते हैं तो कम दाम में लेने के बाद में कम दाम मत लेना, पूरा जो आप लेते हैं दूसरे से उतना ही लेना, हम दूसरे जगह से उतना ही देंगे। तो ये आत्म कल्याण में जो टॉप प्रायोरिटी है उसमें कम दाम ले करके उसको पूरा पूरा हमको सुख लेना है, अनंत सुख लेना है, ये बात क्यों
बराबर
होनी ही नहीं चाहिए? हमको पूरी कीमत चुकानी है और पूरा माल लेना है, उतना ही नहीं। 500 की चीज का 125 दे करके भी हमें लेना है, उतनी हमारी तैयारी है। अगर हमें चीज जच गई तो
बराबर
करते हैं कि नहीं? कोई चीज जच गई, मालूम है कि इसकी कीमत कम है लेकिन लेने वाला ज्यादा भाव बोलता है, लेकिन हमको लेनी है तो लेते हैं कि नहीं लेते हैं?
तो
पसंद पड़ गई, बात खत्म। हाँ, पसंद की चीज ज्यादा दाम दे करके भी लेते कि नहीं? तो क्या अनंत सुख वो पसंद की चीज नहीं है क्या? क्या बात है? उतनी हमारी तैयारी नहीं होगी तब तक हमको ये आत्मलाभ होने वाला नहीं है। इसलिए आत्मस्वरूप की तो पहचान नहीं होगी, लेकिन सत्संग का महत्व भी भाष्यमान होगा नहीं। जब तक यह संसारगत प्रीति असंसारगत प्रीति को प्राप्त न हो तब तक अवश्य ही अप्रमत भाव से बार बार पुरुषार्थ को स्वीकार करना योग्य है। क्या है कि प्रीति माने रुचि। जब तक हमारी रुचि संसार में है, हमारी प्रायोरिटी भी संसारिक कार्यों में रहेगी। ये पूरी रुचि बदल जानी चाहिए असंसारगत मैंने मोक्ष में, मोक्षाभिलाषी। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमारी रुचि हमको जरूरत न लगे, वहां तक ऐसी रुचि पैदा हो इसके लिए शिथिल नहीं रह करके, ढीले धच नहीं रह करके पूरी ताकत से इसके पीछे लगना चाहिए। पुरुषार्थ का स्वीकार करना योग्य है, इसका मतलब क्या है? कभी होने वाला होगा तब होगा, वो बात इधर नहीं लागू करनी है। क्या कि हमारी रुचि नहीं बदली, इसलिए हमारा काल नहीं पका होगा, तो काल नहीं पका है, वो बात तुम्हारे समझ में आई, तुमको पोसाता है कैसे, वो बात का सब वो सवाल है हमारा कि ये पोसाना चाहिए नहीं, ये बात क्या होता है, एक दृष्टांत है, थोड़ा अगंभीर है लेकिन थोड़े मुद्दे की बात है। क्या होता है कि तत्वज्ञान का अभ्यास करते करते बहुत सी बातों की जानकारी हो जाती है, पर पुरुषार्थ उठता नहीं जो आत्मकल्याण के लिए यथास्थान में उठना चाहिए। तो क्या होता है कि समय निकल जाता है, पर मुझे पता है, मुझे पता है, इस बात का भी पता है, इस बात का भी पता है, इस बात का भी पता है, तो भाव रहा करता है, पर पता है पता है उसमें खुद ही लापता हो जाता है, ये बात बनती है। इसका एक दृष्टांत है कि घर में रात को सोए हुए थे, उसमें कोई चोर आ गया घर में, पहले तो जमाने में खिड़की से ऊपर आ जाता था, गर्मी के दिन होते खिड़की खुली रहती है, अभी उन दिनों में पंखा का सब सुविधा ही नहीं थी, तो कोई चोर आ गया, तो बाई जाग गई, उसकी नींद की आवाज आई तो उसने अपने पति को उठाने का कोशिश किया कि देखो कुछ आवाज आ रही है, उधर गया कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है, तो कुछ आदमी घर में आ गया लगता है, हाँ वो भी पता है, दिखता है आ गया है, फिर तो वो तो अलमारी खोल रहा है, हाँ कहा तो ऐसा ही, वो भी पता है खोल रहा है, अब तो सब माल उठा रहा है तो वो भी पता है, तो माल उठा करके चला जा रहा है तो वो भी पता है, क्या पता है वो गर्म हो गई कि क्या पता है करके करते हो, माल चला जाता है रोको उसको। ऐसे हमारे समय शक्ति चली जा रही है, हमारी आयु चली जा रही है, हमको पुरुषार्थ का स्वीकार करना योग्य है, उसमें हमें ढीले धज रहना नहीं है, जैसे कैसे भी हमको होना ही है, करना ही है, करना ही चाहिए, इस तरह से हमारी वृत्ति होनी चाहिए। शिथिलता भी वहाँ, शिथिलता का भी स्वीकार, किसी भी बहाने शिथिलता नहीं होनी चाहिए। यह बात त्रिकाल में विसंवाद रहित जानकर निष्काम भाव से लिखी है, ये जो पुरुषार्थ वाली बात लिखी है उसमें विसंवाद करना योग्य नहीं, आर्ग्यूमेंट दलीलबाजी उसमें मत करिए, क्योंकि हमने लिखी है केवल आत्म कल्याण के लक्ष्य से लिखी है, निष्काम भाव मैंने, हमको कुछ कामना नहीं है इसमें कि आपका हमारा संबंध बना रहे, आपसे कुछ मिलता रहे या कुछ न कुछ होता रहे, निष्काम भाव से लिखी है, हमको कोई अपेक्षा नहीं, एक केवल आत्म कल्याण के हेतु से इस बात को लिखी है कि आपको पुरुषार्थ करना जरूरी है, ये 25वें संघर्ष में लिखा है, करीब 1.25 साल हो गया है अपने को ज्ञान होने में और करीब उनके संबंध होने में 1.5 साल हुआ है, 2-3 महीने पहले ही इनका मिलना हुआ था सुभाग भाई का और श्रीमद जी का, और बाद में ये चिट्ठी पत्र व्यवहार काफ़ी चला है, इतना पत्र व्यवहार चला है कि शायद कोई दिन ही खाली जाता सुभाग भाई श्रीमद जी को चिट्ठी नहीं लिखते, कभी एक दिन में 2 चिट्ठी भी लिख दे रहे, रहते थे अलग अलग क्षेत्र से लेकिन इसकी आत्मा श्रीमद जी के चरण में रहते थे, तो विस्मरण ही नहीं कर पाते थे, रोज लिखने की क्या बात हो सकती है, सवाल तो वो पैदा होता है। हमने कुछ चिट्ठियां पढ़ी, आज भी इनकी 50 एक चिट्ठी तो प्रसिद्ध हो गई है, और भी कोई 80 चिट्ठी कवानियां में आज भी संग्रहित है। कोई विषय नहीं मिले तो अपने परिणाम आज कैसे चले वो लिख देते। परिणाम तो चलते हैं कि नहीं चलते हैं, मतलब क्या होता है कि अपने श्री गुरु के पास उन्होंने अपने परिणाम की किताब खुली रखी है, बंद किताब नहीं रखे, एकदम खुली। आज तो ये परिणाम चलता है कि कल मुझे सुबह 4 बजे बैलगाड़ा लेकर के, उस दिनों में तो साधन दूसरे नहीं थे नावड़े में, तो वही फिर मेरे को जाना पड़ेगा और वापिस आने में शायद दोपहर को 4-5 बज जाएगा, मैंने नाश्ते का टाइम हो जाएगा। दोपहर का नाश्ता को हमारे यहाँ गुजराती में रौंढा कहते हैं, रौंढा नो टाइम थे जैसे समय थे जैसे, तो उसको थोड़ा बहुत खा लेते हैं। ऐसी ऐसी जिसको निकम्मी बात बोले ना वो भी लिख देते थे और उनको जो परिणाम व्यापार में लगते थे वो भी लिख देते थे कि भाव घट गए हैं, व्यापार में घाटा आया है, परिणाम खींचते हैं, ऐसा होते हैं। और आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, बहुत कमजोर थी कि परिवार वाले को रोटी खिलाना मुश्किल हो जाए, ऐसी तंग परिस्थिति में वो आ जाते थे। फिर भी उन्होंने उत्कृष्ट मुमुक्षुता पात्रता की प्राप्ति की थी और आगे जाकर के ज्ञान दशा की प्राप्ति की है। वृद्धावस्था में उनको श्रीमद जी की भेंट हुई थी, करीब 66-67 साल की उम्र में, 6-7 साल तो परिचय में रहे हैं। और उनकी चिट्ठी जो पड़ी है वो तो आजकल प्रसिद्ध हो गई है, मृत्यु के पहले 17-18 दिन पहले उनको स्वानुभव हो चुका। स्वानुभव होने के बाद 17 और 18 दिन में उनका दे छूटा है। ऐसी परिस्थिति में आनंद भाव की कमाई करके गए हैं, देखो ये इनको संघ का फल मिला, श्रीमद जी का संग किया और इस भाव से किया, इस वृत्ति से किया तो परमेश्वर बुद्धि से किया। 1954 में आता है, सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि, इस ज्ञानियों ने परम धर्म बोला है, मोक्ष के लिए परम धर्म बोला है। देखिए भगवान में तो परमेश्वर बुद्धि आती है क्योंकि संपूर्ण वितराग है। मुनिराज को भी कहीं संसारिक प्रवृत्ति में दिखने में नहीं आते, सर्वसंग परित्याग करके निग्रंथ होकर के निष्परिग्रही होकर के निकल गए हैं और अपने लिए कोई भी सुविधा का स्वीकार भी वो नहीं करते, खुद तो अपनी सुविधा बनाते नहीं, बनवाते नहीं, अगर कोई बनाता है तो उसका स्वीकार करते नहीं। कृतकारित अनुमोदना से, मन से, वचन से, काया से, वहां भी परमेश्वर बुद्धि होना संभव है, लेकिन सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि होना संभव नहीं है क्योंकि उनको संसारिक उदयों का सद्भाव देखा जाता है। तो वो कैसे हो सकता है, कहीं मिथ्या तो नहीं लगेगा हा? लेकिन लिखा है श्रीमद जी ने 254 पत्र में वो बात लिखी है। तीन कारण लिया है, परम दीनता का अभाव, तो परम दीनता का अभाव में वो बात उन्होंने लिखी है। दूसरा कारण मोक्ष मार्ग की योग्यता प्राप्त करने के लिए जो प्रतिबंधित कारण है वो दूसरा कारण है। पेज नंबर है 291। सत्पुरुष में नीचे से दूसरा पैराग्राफ, सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि किसे ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। कैसा धर्म कहा है? परम धर्म कहा है। और यह बुद्धि परम दीनता को सूचित करती है
जी।
तो बहुत विनय आता है, जैसे परमेश्वर के प्रति विनय आता है ऐसा इनके प्रति आता है। इसका एक कारण वो है कि जैसे परमेश्वर के निमित्त से जीव तिर जाता है
जी।
वैसे ज्ञानी के निमित्त से भी जीव तिर जाता है, तो तिरने वाले को तो बात एक सी होगी, बराबर बात होगी। सुबह जी ने थोड़ा और ज्यादा बोल दिया है, परमेश्वर बुद्धि से ज्यादा बोल दिया है, तो जरा ओवर बाउंड सिक्सर लगाया है उन्होंने, तो बाउंड्री के बाहर चले गए वो। उन्होंने ये कहा कि गुरुदेव तो मेरे लिए अनंत तीर्थंकरों से भी अधिक है, ये भक्ति आए बिना रहेगी नहीं, आए बिना रहती भी नहीं। क्यों? कि अनंत तीर्थंकरों के समूह शरण में भटक के वापिस आया,
बराबर
मुझे लाजमा हुआ नहीं था, क्योंकि अयोग्यता मेरी थी, तीर्थंकरों का कोई दोष नहीं है। पर यहाँ इस निमित्त से लाभ हुआ तो बहुमान आरोपित कथन में बहुमान ऐसा ही आता है कि जो अनंत तीर्थंकरों से लाभ हुआ नहीं हुआ वो मेरे यहाँ से हुआ है, तो उतना ही भाव आए बिना रहेगा नहीं। ये परम विनय मैंने अनंता विनय इसलिए आता है कि लाभ भी अनंता हुआ है,
बराबर
तो उसके पैमाने में आएगा ना, तो इस तरह से उस प्रकार का भाव आए बिना रहता नहीं। एक कारण तो वो है, वो तो न्याय युक्त है, वो तो कारण न्याय युक्त है। दूसरा एक कारण है कि सत्पुरुष को पहचाना है उसकी अंतर परिणति से, आत्म परिणति से, पूरे भावों से नहीं पहचाना, और पहचाना जाता भी
नहीं
है। वो आत्म परिणति स्वरूपाकार परिणति है, और स्वरूप परमात्मा स्वरूप है
जी,
तो परिणति भी उस आकार हुई है। तो उस परिणति के दौरान सतपुरुष के हृदय में विराजमान परमात्मा पद का दर्शन करने को वो पहुंच गया,
बराबर।
जो मुमुक्षु की आत्मा ने सतपुरुष को पहचाना, वो सतपुरुष के भीतर में विराजमान जो परमात्मा है वहां तक पहुंचा,
बराबर।
इसलिए उसमें उसको परमेश्वर बुद्धि आई, पर तभी उसको ज्ञान हुआ कि सभी आत्मा ऐसे ही परमात्मा है, तभी उसको ज्ञान हुआ कि मेरी आत्मा ऐसी ही परमात्मा है। प्रत्यक्ष परमात्मा को देखे बिना परोक्ष परमात्मा को कोई देख सकता नहीं, इसलिए ये सिद्धांत है कि जब तक सत्पुरुष की पहचान नहीं होती किसी को भी आत्मस्वरूप की पहचान नहीं होती, अनुभव तो बात की चीज होती है। तो ये उनकी प्रगट परिणति, स्वरूपाकार प्रगट परिणति, तो प्रत्यक्ष परमात्मा स्वरूप है, और ये प्रगट दिया प्रगट हो गया है, और हमारे में जो परमात्मा है ये शक्ति रूप है, व्यक्ति रूप अभी नहीं है, शक्ति रूप है। व्यक्ति की पहचान नहीं हो और शक्ति की पहचान हो जाए, ये बात संभव हो ही नहीं सकती, इसलिए वो बात उन्होंने खास करके जगह जगह पे रखी है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ कि मुमुक्षु को ये परिस्थिति आए बिना, मैंने ऐसे कोई जरूरत दिखे बिना, उसके वचन में अचलित विश्वास आएगा नहीं। किसी भी ज्ञानी के वचन में अचलित विश्वास होना कि बिना पहचान संभव नहीं है। क्यों? कि उन्होंने परमात्मा स्वरूप में देख लिया उसको, फिर उसको अविश्वास का कारण नहीं बनेगा। और इसके वचन के प्रति प्रीति होना, भक्ति और होना और प्रीति भी होना। वचन बहुत सुनाएंगे, कोई किसी भी ज्ञानी के वचन हो, एक ज्ञानी के वचन हमको सुनाते हैं, दूसरे ज्ञानी के वचन हमको नहीं सुनाते हैं। समझना चाहिए कि हमको गड़बड़ बड़ी अंदर में रह गई है, क्योंकि आत्महितकारी वचन होते हैं। और अगर ज्ञानी के प्रति
कैसे पता चलेगा हमको पहचान हो गया ज्ञानी का? जैसे हमको ज्ञानी पहचान हो गया तो हमको कैसे पता चलेगा पहचान हो गया?
हाँ, पहचान हो गया वो ऐसे पता चलेगा। पहचान का वो दृष्टांत दिया था कि कोई भेष बदल के आता है तो भी हम पहचान जाते हैं, पहचानते कि नहीं पहचानते हैं। कोई स्त्री पुरुष का वेश पहन ले, आजकल पहनते ना पैंट वगैरह पहनते कि नहीं पहनते हैं, तो क्या वो धनी नहीं पहचानेगा कि ये मेरी पत्नी है? भूल जाएगा वो है? पति पत्नी को पहचानता कि नहीं पहचानता? पहचानता है। अब वो वेश बदल के आ गई,
परिचय
से ही पहचान होती है। बिना परिचय किसी की पहचान होती नहीं।
उसका प्रश्न ये है कि हमें पुरुष की पहचान हुई है तो कैसे मालूम पड़ेगी?
हाँ, वही कहते हैं,
मिला नहीं है,
पर्दे नहीं मिला तो परिचय मिलाना चाहिए। परिचय हुए बिना पहचान हो जाएगी वो बात नहीं है। परिचय करना पड़ेगा, परिचय में रहना पड़ेगा, फिर पहचान होगी। बिना परिचय पहचान होगी वो बात बनने वाली नहीं है। अब क्या है कि सतपुरुष का वेश बदलता रहता है, उनको भी शास्त्र भी पढ़ता है और कभी दुकान पे जाकर के धंधा भी करता है, और दूसरे संसारी जैसे जैसे प्रसंग में आते हैं, जैसे जैसे प्रसंग में उनके भी यहाँ भी शादी ब्याह होता है, खुद भी शादी करता है। और चक्रवर्ती सतपुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो रोजाना शादी करते हैं, क्योंकि 96,000 में आयु तो किसी न किसी की कभी न कभी पूर्ण होती रहती है। सब स्त्रियां की एक आयु होती नहीं, उनके तो लिस्ट रहते हैं राजकुमारियों का, अलग अलग राजाओं के। बिना कोई भी खाली जगह हुए तो हमको हमारी बेटी को भेजना है, हमको तो बहुत शादी होती। ज्ञान दशा होने के बाद ये होता है। और रामचंद्र जी सीता के पीछे रोने लग गए, पद्म पुराण पढ़ो, सीता जी का हरण हुआ तो वियोग हुआ तो रोने लग गए। ऐसे महापुरुष, युग पुरुष, जबरदस्त पुरुष एक पत्नी के वियोग में बच्चों की तरह, बच्चों के क्या पागलों की तरह रोते थे, पेड़ों को पूछते थे। कोई तो पूछता है समझदार आदमी, पागल हो कुछ है, ऐसी हालत बन गई थी। हाँ, वरना तो हम शंका कर देते हैं कि क्षोभ सम्यक दृष्टि होगा, वमन हो गया होगा, उस वक्त मिथ्या दृष्टि हो गया होगा, बाद में फिर संकेत ले लिया होगा, लेकिन वो साहित्य सम्यक दृष्टि
छूटने वाला भी नहीं था, वो छूटने वाला भी नहीं था,
इसलिए शंका की गुंजाइश वहां नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे भेष बदलते हैं तो बिना पहचान ठिकाने रहना मुश्किल है, शंका हो ही जाएगी। इसको कहते हैं पहचान, कि हर हालत में उनको ऐसा ही समझे जैसा पहचाना है
वैसा ही समझे।
इसको कहते हैं पहचान। पहचान में तो कैसे पता चले, क्या बात है, पता चल ही जाता है। तो आपके कोई परिचित संबंधी है, बहुत पैसे वाले हैं, लाखों करोड़ों का दान देते हैं। कितना?
लाखों करोड़ों
का दान देते हैं। किसी ने आकर के बोला कि ये आदमी जैसा कंजूस आदमी मैंने देखा नहीं
जी।
आपको इसकी उदारता का परिचय है पूरा, पर अनुभव भी है समझो। तो किसी ने आपको बोला कि ऐसा कंजूस आदमी मैंने कहीं देखा नहीं
जी।
कि क्या बात करते हो, हम कैसे मानेंगे? देखो मैं मेरा अनुभव की बात करता हूँ। वो लोग वो क्या बोलेगा, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं करता हूँ, मैंने जो देखा है वो बात कर रहा हूँ। क्या बात थी? एक बहुत गरीब आदमी था, उतना परेशान था, उतना दुखी था, कपड़े भी टूटे फूटे थे, भिखारी था। वो तो कोई चारा नहीं आठा नहीं मांग रहा था, गर्म हो गया इसके पे, निकल जा नहीं देने का, निकल जाता हूँ यहाँ से, नहीं निकालने देने का। होगा कुछ टेंशन में उस वक्त, कुछ भी कारण होगा। तो विकल्प ऐसा आया कि पैसा उन्होंने चारा खाने देने के भाव पे जगह उसको धक्का मार करके निकाल दिया। उसने उन अपने नजर के सामने देख लिया, आगे पीछे कोई परिचय था नहीं। तो देखा कि इतना कंजूस आदमी, इसके पर दया नहीं आई, चारा खाने में जाता क्या? उसको तो करोड़पति तो आदमी है, इतने पैसे हैं चारा खाने में, उसका क्या जाता? लेकिन बहुत कंजूस दिखता है। तो उसने जा करके बात किया, तब किसकी मानना वो नहीं गया। भाई आपने देखा हो तो भले ही देखा हो, लेकिन हम मानेंगे
नहीं मानेंगे।
हमको वो तुमसे ज्यादा परिचय है और हम तुमसे ज्यादा उसको पहचानते हैं। तो ऐसे ऐसे चित्र विचित्र प्रसंग सत्पुरुष के विषय में होते हैं, और उसकी पहचान अनंत काल में हुई नहीं, इसी कारण से हुई नहीं। बहुत अटपटी दशा है वो। कैसी है?
अटपटी दशा।
बहुत अटपटी है, थोड़ी अटपटी नहीं है, बहुत अटपटी है। तो उस विषय में रामचंद्र जी को आज हम मानते हैं, क्योंकि रविशरण आचार्य देव ने पद्म पुराण में उसका चरित्र लिखा है। आचार्य तो कोई दूसरी बात लिखते नहीं, जो घटना घटी वो सब लिखी। हम तो इसलिए मानते कि वो परोक्ष है और आचार्य ने लिखी है, इसलिए ताकि उस वक्त रामचंद्र जी हमको मिल जाते ना, तो हम मानने वाले नहीं थे। पागल है पागल, क्या बोलते हो आप? हमारी नजर के सामने देखा रोते हुए, उतने रोते थे। आजकल कोई नया शादी किया हुआ आदमी भी इतना तो नहीं रोता है, उसमें तो कई साल हो गया था शादी हुआ भी, फिर भी इतने रोते थे। तो उनको तो बैठेगी नहीं बात, कोई बात नहीं बैठेगी, ऐसी परिस्थिति होती है। और बिना सत्पुरुष की पहचान, किसी को आत्मस्वरूप की पहचान हुई हो, कभी बना नहीं, बनने वाला भी नहीं है। इसलिए हमारा अनंत काल गया है। हमारा अनंत काल क्यों गया? धर्म साधन तो बहुत किए, लेकिन सम्यक दर्शन की लिंक कहाँ है? स्वानुभूति की लिंक कहाँ है? कि स्वरूप की पहचान के साथ, और स्वरूप की पहचान की लिंक कहाँ है? सत्पुरुष की पहचान के साथ। और इसके लिए योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए, इसके बिना ये बात कभी संभव
नहीं
है, ऐसी बात है। एक निर्णय कर लेना अलग बात है, और उसमें टिकना वो दूसरी बात होती है। ऐसे इसलिए कहते हैं कि हमने ये बात निष्काम भाव से लिखी है, शंका मत करना, हमारे वचन में शंका मत करना। और उसमें कोई भी संवाद मैंने कोई आर्गुमेंट भी
नहीं करना,
नहीं करना, ऐसी बात है। इस तरह से एक छोटा सा पत्र में उन्होंने सत्पुरुष का और सत्संग की महात्मा दिखाया है कि ऐसा महात्मा ये बिना हमारी सुख बुद्धि सांसारिक पदार्थों में से उठेगी नहीं और आत्मा में सुख स्वरूप आत्मा है, सुख का समुद्र है, वो भाष्यमान होने वाला है ही नहीं। भाष्यमान होना मैंने पहचान की पहचान के बाद बहनश्री ने भी वचनामृत ग्रंथ में जगह जगह की है, बहुत की है, स्वरूप निर्णय की बात बहुत आई है उनके वचनों में भी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि वहां से स्वरूप का लक्ष्य बन जाता है। स्वरूप लक्ष्य होने के बाद ज्ञान में से स्वरूप खिसकता नहीं, हटता नहीं, पर हटता नहीं तो जो भी संसारिक भाव हो या धर्म के साधन के परिणाम हो, लक्ष्य में एक ही चीज रहती है। इतना महान है, इतना महिमावंत है कि एक बार उसकी पहचान होने से उसका लक्ष्य हटता नहीं। तो श्रीमद् जी ने वो बात आत्मसिद्धि में इस तरह लिया है कि लक्ष्य थवाने तेहनो कयान शास्त्र सुखदाय। हमने जो शास्त्र लिखा गया है वो लक्ष्य होने के कारण से लिखा है, पहचान होने के कारण से लिखा है। इतने स्वरूप निर्णय तक अगर पहुंचा जाए तो फिर आगे की प्रक्रिया बहुत आसान है, मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया बहुत आसान है। इसका कारण एक लक्ष्य हुआ वही है, वरना तो संवेदन की ज्ञान सामान्य की परिस्थिति तो सभी जीवों में है। आबाल गोपाल में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव हो ही रहा है अपने परिणमन में, लेकिन लक्ष्य और जगह होने से उनको वो मालूम पड़ता
नहीं है।
इसीलिए लक्ष्य का बहुत महत्व है और सभी शास्त्रों का उपदेश कि लक्ष्य पर आने के लिए होता है। इस तरह से यहाँ तक रहता है।